पहले जो लाइट अरे पहले जो यहाँ पर रहता था
और दीजिए प्रभु ला रहे हैं
श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 45 अध्याय हम लोगों ने पहले जाने के पहले विदेश अक्रूर कृष्ण और बलदेव को मथुरा लिया है उसके बीच की सारी बातें हम लोगों ने बतलाया है। कंस मारा गया और कंस के मारे जाने के बाद जनक और जननी वसुदेव जी और देवकी दोनों को बंधन छुड़ाया और उग्रसेन पूरा बार बार तुम सुनो तो अच्छी तरह से तुम चुपचाप बैठ करके सुनो सभी लोग सुनो अन्यथा फिर हम प्रवचन करने आएंगे नहीं।
इसको एक बार लास्ट वर्ड की कर
जनक जन वसुदेव और देवकी का बंधन छुड़ाया उन्हें सांत्वना दिया और फिर नंद बाबा से यशोदा से उनकी बात की और चले आओ ना सब वो नीचे बैठे हुए हैं सब ऊपर में जगह हो जाए और ये सोचता मोर फॉरवर्ड देयर इज सो मच प्लेस इधर में बहुत जगह पड़ी डोंट सीट देयर संध्या आप चले आइए आप इधर चले देयर इज लाइन लेडीज शुड बी ऑन दिस लाइन जेंटलमैन शुड बी दिस देयर इज सो मच प्लेसेस हियर फॉर लेडीज
देवकी का बंधन मोचन
तो जिस समय कंस को मारा मार करके माता पिता का बंधन छुड़ाने आए बंधन खोल दिया खोलने के बाद में पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा गुप्त पुरुषोत्तम मा भूत इति निजान माया ततान जनमोहिनी जब पिताजी के पास में गए माताजी के पास में तो बलदेव जी पिताजी के पास में गए और कृष्ण माताजी के पास में गए और उनको प्रणाम किया तो माता पिता हाथ जोड़ करके खड़े रहे कृष्ण का वैभव देखा ऐश्वर्य देखा कि कृष्ण कैसे चारण मुष्टि को मारा और तत्पश्चात मिनटों में कंस को मार डाला बिना परिश्रम के जैसे सिंह एक बकरी को मारे ऐसे बिना पराश्रम के ही मार डाला। माताजी देख करके उपलब्ध अर्थ देखा जी इनको कुछ ऐश्वर्य भाव हो गया मेरे प्रति इसलिए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए दोनों तत्पश्चात पुरुषोत्तम जो भगवान हैं माँ भूत इति ऐसा न हो कि हमें ये भगवान के रूप में देखें। इसलिए अपनी माया ततान, अपनी माया को उन पर लगाया। जनमोहिनी, जनमोहिनी जो विमुख को मोहन करने वाली और उन्मुख को भी मोहन करने वाली, जो विरोधी हैं उनको
अनुकूल
प्रतिकूल रूप से मोहन करने वाली महामाया के रूप में, और अपने जन, अपने निज जन हैं उनको जोग माया के रूप में, उनके ज्ञान को आच्छादित करके, ऐश्वर्य भाव को आच्छादित करके, माधुर्य भाव को बनाने वाली इस माया को आदेश दिया और साथ ही साथ उनको मुग्ध कर दिया। कैसे? और मरे ऐश्वर्य को देख करके तो ये हमें प्यार नहीं करेंगे और हमारी लीला नहीं हो सकेगी। इसलिए ऐसा न हो, इसलिए उन्होंने अपनी लीलाओं को आगे चालू रखने के लिए उन्होंने माया के द्वारा उनके ज्ञान को संभव। उवाच पितरा वेते वेत्य साग्रहम सातर्षभ प्रशयानवंत। ये बहुत पहले वाला था, उस समय में कृष्ण अपने भाई के साथ में, बलदेव जी के साथ में बहुत नम्रता से बैठ करके मैया के चरणों में सिर झुका दिया, और बलदेव जी ने पिताजी के चरणों में, इट इज वेरी हार्ड, झुका दिया और बोले कि पिता, और वो बोले मैया, आप लोग जब से मेरा जन्म हुआ तब से बड़े उद्विग्न रहे। कंस मुझे मार न डाले, बहुत उद्विग्न रहे, और हमको यहाँ से गोकुल में भेज दिया। इसलिए बाल पौगट और किशोर की लीलाएं और जो बात्सल्य रस है उसका आप लोगों ने आस्वादन नहीं किया। बचपन में पिता माता पुत्र की सेवा करके लालन पालन करके बहुत सुखी होता है, तो हम लोगों को आपने, मुझे, हम लोगों को, दोनों भाइयों को आप प्यार नहीं दे सके, दूध नहीं मैया पिला सकी, पिता लाल पालन नहीं कर सके। बाल्य पौगंड और कैशोर दशा, इसका जो सुख होता है पिता माता को पुत्र के लिए, वो आपको अनुभूति नहीं हुई। बाल्य जन्म से ही गोकुल चले गए, कब तक रहे? 3.5 वर्ष की स्थिति तक रहे। बाल्य पौगंड और कैशोर, बाल्य होता है 5 वर्ष तक, पौगंड होता है 10 वर्ष तक, और कैशोर होता है 15 वर्ष तक, साधारण ऐसा नियम है। बाल्यावस्था 5 वर्ष तक की, बच्चा इधर उधर खेलता है, कभी पैर पर चलता है, कभी घुटनों पर चलता है, और पौगंड होता है, अभी छोड़ कभी जरूरत नहीं जब, और पौगंड होता है दस वर्ष तक साधारण लोगों की, और कैशोर होता है 15 वर्ष के लिए साधारण लोगों के, जिसके बाद में युवावस्था आ जाती है। युवा कैशोर के भी 3 स्थितियां हैं, पहली वयसंधि, फिर उससे बड़ी स्थिति, और फिर पूर्ण कौश व्यक्त किशोर और पूर्ण किशोर कैशोर। ओगंड में भी ऐसे ही 3 स्थितियां हैं। तो ये कह रहे हैं कैशोरम पुत्रा अभवन पचि, बाल पौगंड और किशोर की लीलाओं का आप लोग रसास्वादन न कर सके, किंतु देखा जाता है कि कृष्ण यौवन अवस्था के प्रारंभ में यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि मथुरावासी महिलाएं जब कंस और चारुण से इनका युद्ध हो रहा था और कंस ऊपर मंच में बैठा था, देवकी वसुदेव को वहीं पर बैठाया गया था, नंद बाबा को भी और सखाओं को वहीं पर बैठाया गया था, क्योंकि इनके देखते देखते ही इनको इसको कृष्ण और बलदेव को हम मारेंगे, ये देखें। इसलिए वो कह रहे हैं कि पूर्ण यौवन प्राप्त नहीं, अर्थात यौवन वहाँ पर आरंभ हो गया, तो ये 16 वर्ष की स्थिति में आनी चाहिए उनको। समाप्ति होने पर भी होता है तो 16 वर्ष यौवन का आरंभ होता है तो आना चाहिए, किंतु कृष्ण जब आए तो उस समय उनकी उम्र कंस को मारते समय में 10 वर्ष कितना महीना था, पूरा 11 वर्ष भी नहीं हुआ था, तो फिर ये कैसे सामंजस्य होगा। इसके लिए सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और कृष्ण ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतला रहे हैं, और लोगों के लिए तो वो साधारण नियम है, 5 वर्ष तक बाल्यकाल, 10 वर्ष तक पौगंड और 15 वर्ष तक कैशोर, किंतु कृष्ण के लिए नहीं। क्यों? राजकुमार की भांति जैसे कि पुष्ट होता है जल्दी, वैसे मक्खन मिश्री खाने वाले, ब्रज के स्वच्छंद वातावरण में पलने वाले नंद बाबा के राजकुमार कृष्ण 3.5 वर्ष की अवस्था में उनका पौगंड समाप्त हुआ, क्योंकि 3 वर्ष 6 महीने या आसपास में दामोदर जी की लीला हुई, दामोदर लीला, और उसी के बाद में विघ्न के कारण गोकुल छोड़ देना पड़ा 3.5 वर्ष की उम्र में। इसके बाद में उनकी पौगंड लीला आरंभ हो गई, इसलिए 3.8 वर्ष तक उनका पौगंड माने जाए,
बाल्य
वो 5 वर्ष नहीं, और पौगंड अवस्था साधारण रूप में 10 वर्ष की होती है। इन्होंने 7वें वर्ष में गोवर्धन को उठा लिया और गोपियों से इनका मिलन हुआ, पूर्वराग हुआ, इसलिए कैशोर अवस्था आ गई। कब से? 6.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष 8 महीने से लेकर के 10 वर्ष तक ये किशोर रही, और 10 वर्ष के बाद में 10वां जब आरंभ हुआ और वो कार्तिक महीना आया, उसी का लीला का सब विवरण दिया है कि कौन कौन दिन में क्या हुआ। तो उसमें वहाँ पर किशोरावस्था में गोवर्धन को उठाया 7 वर्ष की उम्र में, उस समय पौगंड समाप्त हो गया 6.5 वर्ष की उम्र के बाद में, और 7वें वर्ष में गोवर्धन को उठाया, यहाँ से व्यक्त किशोर आरंभ हुआ, और इसके बाद में ही उन्होंने राश इत्यादि किया, और ये राश करने के बाद में केशी दैत्य का वध किया, और उसके बाद में नारद जी के उपदेश से वो मथुरा में आए, और 10 वर्ष 11 वर्ष पहले ही 10 वर्ष 8 महीने के अंदर में यहाँ पर कंस का वध किया। जिस समय वध किया उसके पहले दिन तक कार्तिक के महीने से उनका ये कैशो समाप्त हुआ और व्यक्त यौवन वहाँ पर उत्पन्न हुआ कृष्ण का। 11 वर्ष की उम्र हो गई तो 10 वर्ष 8 महीने तक किशोर अवस्था, तो ये सब उनको आस्वादन का मौका नहीं मिला माता पिता। जिस दिन वो कृष्ण आए और कंस को मारा वो व्यक्त यौवन में प्रवेश कर गए थे, इसलिए वो ठीक कह रही हैं कि व्यक्त अभी अभी यौवन पूर्ण अवस्था नहीं, उसके पहले ही उसके पहले की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कंस को उस दिन मारा जबकि ये व्यक्त जो। तब कृष्ण में एक खूबी है, उनका यौवन रहे या 80 वर्ष के हो जाएं, 100 वर्ष के हो जाएं, जितने भी वर्ष के वो सब समय किशोरावस्था जैसा उनका रूप है। ये भगवत्ता का लक्षण है, यौवन जैसे नहीं दिखेंगे कृष्ण। तभी गोपियों ने उन्होंने कहा है मथुरा वासियों ने, किस लिए कैसा कहा, क्योंकि वो मथुरावासी है, वो किसी और अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते, किंतु उनका रूप वैसा रहेगा। कैसे, शायद 100 वर्ष की उम्र में जिस समय में कृष्ण द्वारकापुरी में थे और उनके पुत्र सब रानियों से शादी हो गई थी, उनके पुत्र कलत्र भी पैदा हो गए थे, उस समय उनका पुत्र प्रद्युम्न जी जो कि कामावतार थे, वो किशोर अवस्था में जब उषा के साथ में वहाँ पर उपस्थित, कौन किसके साथ में आए,
रति
देवी के साथ में आए, तो इन लोगों ने देखा जिस कृष्ण ने बस लजा करके रुक्मिणी सत्यभामा सब हट गई, समझा जी कृष्ण आ गए, क्योंकि कृष्ण ही जैसे वो सुंदर थे, तो उस समय भी कृष्ण ऐसे सुंदर थे मानो वो प्रद्युम्न जी आए, 14-15-16 वर्ष की स्थिति की शोध जैसे, तो कृष्ण वशिष्ठ। इसलिए कृष्ण का रामचंद्र जी का किशोर अवस्था नहीं रहती, वो ऐसे ही बनी रहती, चाहे वो जितना भी जन उनको ऐसी गो पकती नहीं, रेखाएं आती हैं केवल, और सब समय उनका चिरकिशोर रूप पर रहता है। व्हाट आई टोल्ड यू सो टोल्ड something but because they are waiting something and I will rest something little little you should give। किसी कारण से हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप लोगों ने मुझे गोकुल भेज दिया हम लोगों को, इसलिए बाली स्थिति ऐसी जो सुख हमको भोग करना चाहिए हम भी नहीं भोग कर सके, और आप लोग भी पिता जैसा स्नेह संतान को कर करके जैसे प्यार से करती है वो भी आप लोगों को, वो बच्चे का सुख आप लोगों को नहीं मिल सका। विशेष करके जिस पिता और माता के द्वारा यह शरीर मनुष्य शरीर मिला है और जिन्होंने अपने गर्भ में और पीछे से सब प्रकार से पिता ने जिस प्रकार पिता जैसे पुत्र की सेवा करते हैं पालन पोषण करते हैं, और वह बेटा यदि बड़ा हो जाए तो जिसने रक्षा किया जो लोगों ने पालन पोषण किया है बहुत दूर क्या ये बेकार था। ये तो ऐसे ऐसे सब सब खराब होता जाए
बिल्कुल नहीं करता।
इस प्रकार का दुर्ही रोग, इस प्रकार जब वो बेटा बड़ा हो जाए तो शतवर्ष का जीवन धारण करके भी 100 वर्ष का वो जब भी हो जाए, 1 वर्ष तक भी माता पिता की सेवा करके उसका ऋण मोचन करने में समर्थ नहीं होता है। 100 वर्ष तक का भी जीवन रहे तो माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। लड़की के लिए भी, दोनों के लिए, पिता और पुत्र दोनों के लिए। जस्तु तयो आत्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्ति न दद्यात् तं प्रेत्य स्वमांसं खादयति, स्वमांसं खादयति। तो जो पुत्र बड़े होने पर समर्थवान हो जाए या जो कन्या समर्थवान हो जाए, पुत्र और कन्या, और समर्थ होने पर भी देह द्वारा, धन द्वारा माता पिता का जीविका संबंधन नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करते, नहीं करते, तो परलोक में भी जमदूतगण उनको उनका ही मांस खिलाया करते हैं, उनको अपना मांस खाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा आया है। ये क्या तुम उलट पुलट कर रहा है? मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अभिव्रत श्वसन मृत। समर्थ पुत्र, समर्थ व्यक्ति बड़े होने पर माता पिता का, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समझो, केवल पुरुष के लिए ही नहीं, माता पिता, कुल के वृद्ध, साध्वी स्त्री, ऐसी स्त्री नहीं, साध्वी स्त्री के लिए कहा, साध्वी स्त्री, शिशु, पुत्र, गुरु, ब्राह्मण और आश्रितों का पालन नहीं करता तो जीवित ही मृत्यु के समान है, और किसी कारण से उसको स्वर्ग इत्यादि भी हो गया तो स्वर्ग में भी अपना मांस खाना पड़ेगा। रामचंद्र जी वनवास के समय में एक बार किसी ऋषि आश्रम, ऋषि के साथ में जा रहे थे एक शहर से दूसरी जगह, उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर तालाब है, चारों तरफ में बहुत सुंदर है, घाट बंधे हुए हैं, ऋषि मुनियों जैसा आश्रम लग रहा था, और उस तालाब के पास ही में, सरोवर के पास ही में एक हृष्ट पुष्ट आदमी का शव पड़ा हुआ था, मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था, कुछ भाग उसका नहीं था और बाकी भाग था, और वो सड़गल नहीं रहा था। देख करके रामचंद्र जी ने उस ऋषि से पूछा, भाई क्या बात है, यहाँ पर ये आदमी पड़ा हुआ है, ये इसका शरीर सड़गल नहीं रहा, और सुंदर सरोवर, मुनियों का आश्रम जैसा ये आश्रम, बहुत ही समृद्ध, हिरण इत्यादि यहाँ पर हैं, पशु पक्षी हैं, किंतु यहाँ पर एक मनुष्य मरा हुआ का पड़ा हुआ है, और ये गल सड़ नहीं रहा, और इसके कुछ अंश कटा हुआ है। तो ऋषि हंसने लगे, ओ ऋषि, अगस्त जी का शिष्य होगा अथवा उनका कोई संबंधी होगा या खुद अगस्त जी ही हों। वो हंस करके कहने लगे, इसके पीछे एक इतिहास है इस स्थान की, एक समृद्ध राजा थे, बचपन में माता पिता ने उनका पालन पोषण किया, कुछ दिनों के बाद में उनकी शादी इत्यादि हुई, गृहस्थ आश्रम में आए, और कुछ दिनों के बाद में वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या में लग गए, माता पिता का आश्रित जनों का कोई भी सेवा इत्यादि नहीं की, माता पिता का भी आदर नहीं किया, उनको पाल पोषण नहीं किया। और इसके बाद में कठोर तपस्या से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग में पहुंचे, सारे सुख उनको उपलब्ध हैं, किंतु भोजन नहीं मिल रहा, भोजन स्पर्श नहीं कर सकते। तो ऋषियों से, वहां के स्वर्ग देवताओं से पूछा, ये मुझको भोजन क्यों नहीं मिल रहा, मैं भोजन स्पर्श क्यों नहीं कर सकता। तो आपने माता पिता की सेवा नहीं की और तपस्या से स्वर्ग आपको मिल गया, किंतु आपके ऋण जो माता पिता के हैं और सब ऋण हैं आपके चुके नहीं, इसलिए आपको अपना ही मांस खा करके जीवित रहना होगा। तो आपका मांस तो स्वर्ग में उपलब्ध नहीं, इसलिए आप जो मर करके यहाँ पर शरीर छोड़ करके वायु शरीर से यहाँ आए हैं, आपका शरीर वहाँ पर है और वो ताज़ा है, और आप प्रतिदिन जाइए और वहाँ मांस का टुकड़ा काट करके अपने शरीर का खा करके फिर यहाँ आइए, आपको सुख तो यहाँ के भोगेंगे किंतु मांस खाना पड़ेगा। तो ये श्रीमद् भागवत में भी वही कह रहे हैं, जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, जिनसे जन्म ग्रहण किया, तो उनको यदि ऊंचा भी स्थान भी मिल जाए तो वहाँ पर भी अपना मांस खाना पड़ेगा। फिर आगे क्या हुआ, वो राजा जो स्वर्ग में था उन लोगों से पूछा, ये हमारा कल्याण कैसे होगा, हम इस घृणित कार्य से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तब उन्होंने बताया, ये किसी वजह से और किसी रूप में, आप यदि आपके हाथ में सोने का कंगन है या यदि अगस्त ऋषि को दान कर दें, साधारण लोगों को नहीं दान करने से, किंतु अगस्त ऋषि जैसे महात्मा को यदि दान करें और ग्रहण कर लें, तो उसके पुण्य से आपका यह इससे मुक्त हो सकता है। अजय अगस्त जी तो दान नहीं लेते, वो आए नीचे और अगस्त जी के आश्रम में गए और उनसे निवेदन किया कि आपको मैं अपना कंगन दान करना। तो उन्होंने कहा कि हमको तो कोई जरूरत नहीं, हम लोग तो पति ग्रह नहीं करते, अजय आप हमारे ऊपर में कृपा कीजिए जिससे मैं इससे मुक्त हो जाऊँ। आप समर्थवान व्यक्ति हैं, दान लेकर के पचाना हजम नहीं, और वो भी गुरु वैष्णव और भगवान के नाम पर दान लेकर के हजम करना जैसे आजकल के हमारे लोग करते हैं, वो तो नरक में भी जगह नहीं हो। यदि उस दान लेने से अगस्त जी डरते हैं तो हम लोगों को कैसा होना चाहिए, इस जर को भी विचार करो। इसलिए अपने लिए मत लो, गुरु वैष्णव के लिए यदि लो करके संपूर्ण उनको दो और वो हजम कर सकते हैं, अगस्त ऋषि जैसा है तब तो ठीक है, नहीं तो उनको भी नरक जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगस्त जी से कहा, अगस्त जी को दया आ गई क्योंकि वो समर्थ हैं, भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने वो कंगन को ले लिया और फिर ले करके फिर किसी भगवत सेवा में उन्होंने लगा दिया, इसलिए उन पर तो असर नहीं पड़ा और उधर में वो अपने इस घृणित कार्य से मुक्त हो गया। और तब से स्वर्ग में जैसे कि देवता लोग वायु भक्षण इत्यादि करते हैं, यज्ञ का अवशिष्ट लेते हैं, इस प्रकार से उसका जीवन सुखमय हो गया। तो यहाँ पर भी यही बतला रहे हैं वाल्मीकि रामायण, हमारे शास्त्र वेद उपनिषद एक ही बात कहते हैं, अभी देख तो नहीं रहे हैं किंतु यदि ऐसा इसके विपरीत करने से ऐसा ही होगा। ये तो हुआ नहीं सेवा करने से, और यदि माता पिता से विरोध करें, उनको मारे पीटे, अपमान करें, लड़ाई लड़ाई मामला मुकदमा सब करें तो क्या होगा, उसकी गति क्या होगी, समझो उस माता पिता से जो गर्भ में धारण किया, कितना किया किया, और उसी शरीर से हम अब भगवत के भजन करने के लिए योग्य हो रहे हैं, और जानबूझ कर कभी भजन करते हुए भी ऐसे माता पिता से यदि झगड़ा करें तो क्या होगा, विवाद करें, उसको विपत्ति में डालें तो उनको क्या, उसको तो शायद कोई नरक भी अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें, किंतु विश्वास नहीं है ना, किंतु नरक भोगना पड़ेगा, शत्रु की तरफ में पीस देंगे दूत लोग, इसलिए संभाल करके चलो। तब एक बात बतलाई गई, देवर्षि भूत ताप्त नृणांग पितृणांग न किंग करो नयंग राज ऋणी चराजन सर्वात्मना ज शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त कर। जिन्होंने मुकुंद की सेवा के लिए संसार के सारे कर्तव्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से भगवान के सरेंडर होकर के आत्मनिवेदन करके और भगवान का संपूर्ण रूप से भजन कर रहे हैं, उनके लिए माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण, देवताओं का ऋण, किसी का ऋण नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं, सबका ऋण तो भगवान के प्रति है, इसलिए वो किसी कारण ही नहीं है। यदि संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके भगवान का सेवा करता है या करती है, उनके लिए ऋण नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी जन्म लेते ही भगवान की सेवा में चले गए, नारद ऋषि जन्म लेते ही 5 वर्ष की अवस्था में माता को छोड़ करके और चले गए भजन करने के लिए संपूर्ण रूप से। चैतन्य महाप्रभु के परिकर लोग रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जितने देखते हैं, वो लोग भी घर बार छोड़ करके संपूर्ण रूप से माता पिता को छोड़ करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु वृद्ध मैया और पत्नी अभी विवाहित और घर को छाड़ा छोड़ करके चले गए। किस रूप में चले गए? संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करने के लिए, और संपूर्ण रूप से भगवान का सेवा किया, उनके लिए इन लोगों का ऋण नहीं है। और बाकी सब लोगों के लिए, चाहे वो घर छोड़ करके आए और संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया है, अपना कुछ अपनत्व लेकर के चलते हैं, अपने विचार लेकर के चलते हैं, वो घर छोड़ने पर भी गृही है, उनका गृह छोड़ना वैध नहीं। काम क्रोध दास या तार लाती खाए, तो वो तो इस संसार में कामनाओं की पूर्ण करने के लिए वो घर में कुछ कष्ट था, मूड मूड़ी भय सन्यासी, स्त्री थी बड़ी अच्छी, वो मर गई, असंतुष्ट में थे, तब देखा जे घर में कोई नहीं मानता है, तो चलो आश्रम में जाएंगे तो खाना पीना खूब सस्ते रूप में चल जाएंगे, लोग आदर भी करेंगे और लाल कपड़ा लेंगे तो लोग प्रणाम भी करेंगे, पैसा तैसा खूब मिलेगा, तो उसमें जमदूतों की रिहाई नहीं होगी, वो नाम अभी उनका नाम नहीं है। जिस पद्धति से गुरु पदाश्रय करके हरिनाम करते हैं और संपूर्ण पे भगवान और भक्तों के आश्रित रहते हैं, तब तो भगवान का माता पिता गुरुजन देवता किसी का भी गुरु बोले, और यदि वैसा नहीं करता भजन करता, अभी आत्मसमर्पण ही गुरु के चरणों में नहीं किया, सब कुछ अपने लिए करता है, और गुरु जी से भी विरोध करके वो अलग रह करके भी, आजकल बहुत से ऐसे हैं हम लोगों के संप्रदाय में गुरु को छोड़ करके बस आराम के साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, भिक्षा कर रहे हैं गुरु वैष्णव के नाम पर, खूब अच्छी तरह से हैं, किंतु क्या होगा उनका अंतिम परिणाम नहीं जानते। भक्ति से भी गए, माता पिता से भी गए और सब तरह से इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। और तो साथ में दिया, थोड़ा सा बतला दीजिए ये चीज़, इसलिए भागवत में सब प्रकार की बातें हैं, आइए सुन करके करने के लिए, और यदि सुन करके भी नहीं करेंगे तो ये भी एक अपराध हो जाएगा, सुन करके भी नहीं कर, इसलिए सुनिए समझिए और करिए, तब तो लाभ ही लाभ है, और यदि इसको पालन नहीं करते हैं तो दोनों तरफ से मरना है, इसको अच्छी तरह से समझिए।